Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वही तो है, भले इंग्लिश में आप बोलते हैं मेजोरिटी माइनॉरिटी, इसमें तो यही चलेगा, बहुओं का मत बहुमत, ज्यादा चलाने की कोशिश मत करना। एक महात्मा जी बोलते हैं, महाराज जहां अपनी चले वहां जरूर चलाना चाहिए, जहां अपनी चले और यदि नहीं चलाता है तो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, और जहां अपनी न चले वहां यदि चलाने की कोशिश करते हैं तो वो भी मूर्ख कहलाता है। जब तक अपनी सरकार थी, अपनी सत्ता थी, किया, अब तो बहुओं का मत आ गया, भाई पीछे हटो, प्रेमपुरी जाओ, सत्संग करो, दश श्लोकी याद करो, पाठ करो, सबसे अच्छा। अब एक माता जी के बहू के साथ खटपट हो गई, बोले अब जाती हूं, चली गई समुद्र के किनारे। इतने में याद आया कि अरे जिसके लिए मैं आई वो तो चीज वहीं रह गई, चाबी भूल गई थी घर में। बहू ने पूछा आप क्यों लौट के आई, बोले चाबी तो यहीं रह गई, मैं चली जाऊंगी तू मौज करेगी। ऐसा भाव होता है संसार का, यह सब स्वरूप है। जाने के बाद अस्थि विसर्जन, फूल चयन करना, गंगा जी में डालना, ऐसे स्थूल शरीर में बाकी चीजों के नष्ट होने के बाद जब जल करके एकमात्र अस्थि अवशिष्ट रह जाती है, ये जो पूरा ढांचा खड़ा है उसी के ऊपर है। और ऐसे स्थूल शरीर में जो देहाभिमान है, कल षट संपत्ति के माध्यम से बता दिया था कि शुरू में प्रारंभ में ही हम लोगों को ऐसा अभ्यास करना है कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म से निवृत्ति कैसे हो। अशुभ कर्म से निवृत्त होने के लिए ही दम का अभ्यास करना है, शुभ कर्म से भी दूर होने के लिए ही उपरति का भाव धारण करना है। इसी प्रकार से समन के द्वारा अवैध मानसिक वृत्ति अर्थात दुर्वृत्ति बनने का अभ्यास कम हो, जिसके लिए समन का अभ्यास करना चाहिए। और प्राय शुरू में अधिकारी का जो लक्षण किया ना, ये आ जाए, फिर आप बृहदारण्यक पढ़ो, छांदोग्य उपनिषद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये केवल कालक्षेप के लिए, आनंद लेने के लिए। जब ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान होने से पहले पठन पाठन, गुरु शिष्य परंपरा आदि सब का निर्वहन करना होता है, लेकिन जब ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त की जो अवस्था है, उसमें फिर उसके लिए कर्तव्य के रूप में क्या रहता है, तो ये वेद का वाक्य है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, इससे कभी प्रमाद न करे। यदि आप ऐसे बैठे रहेंगे, शरीर का भी अपना धर्म है, तो इससे अच्छा है कि कुछ शास्त्रों का अवलोकन हो, भगवान के नाम का माला जपे, तो इससे अपना कालक्षेप अच्छा हो जाता है। कुछ न कुछ तो करना ही हुआ ना, क्या करेंगे। तो जैसे आरुरुक्षर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते और योगारूढ़ सतस्यैव समः कारण मुच्यते, तो समन करना है। समन का मतलब क्या बताया, जहां पर अवैध वृत्तियों की निवृत्ति, अवैध वृत्ति, अवैध वृत्ति मतलब जिसके शास्त्र में विधान नहीं है और ऐसी वृत्ति बन रही है। वृत्ति बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए जो मन है ना, मन में वृत्ति बनती है, शत्रु आया, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि तू मेरा शत्रु है, मन में आ गया कि मेरा शत्रु आ गया। मित्र दिखे, राग की वृत्ति उदित हो गई, शत्रु दिखाई दिए, द्वेष की वृत्ति उदित हो गई। ये जो अवैध वृत्ति है, राग द्वेष से जो ऊपर उठना है, कल जो बताया था, राग द्वेष हम लोगों के अंदर संस्कार वशात जन्म जन्मांतर की जो वासना है, अथवा परिवार के परिवेश में, और ऐसे ऐसे राग द्वेष की परंपरा चलती है, पिताजी के साथ किसी की नहीं बनी, जाने लगे दुनिया से, कहा बेटा सबसे मिलना लेकिन इससे कभी दोस्ती मत करना। अरे बाप रे, आप तो अब जा रहे हो, दाह संस्कार हो जाएगा, श्मशान घाट तक हमारा आपका संबंध है, उसके बाद भी हम क्या चाहते कि मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी जिसके साथ दुश्मनी थी उसके साथ भी तुम निभाना। इसलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति चला जाता है ना दुनिया से, उसके साथ साथ राग द्वेष भी चला जाता है। रावण के जाने के बाद विभीषण को राम जी ने यही कहा कि जब तक वह जीवित था तब तक उसके साथ राग द्वेष का संबंध था, चले जाने के बाद वह भी वहीं समाप्त हो गया। तभी तो कहा जाता है कि घर में कहीं किसी से मिलने जाओ, जब वो अच्छी स्थिति में है तब कभी मत जाना मिलने के लिए। खबर तो मिल ही जाती है उनका कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन जब संकट में हो, खास करके जब गुजर जाए कोई, तब बिना बुलाए चले जाना चाहिए। उसमें ये मत सोचो कि हमको खबर नहीं दिया हम क्यों जाए, ये सब ईगो है ना, अहम हो जाता है इतना दृढ़, कोई कहे भी तो नहीं हमको नहीं जाना, मरने दो, जब जीते जी नहीं हुआ तो मरने के बाद क्या जाना है। लेकिन शास्त्र वैसा कहते हैं उसके जाने के साथ ही राग द्वेष भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये राग द्वेष हम लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से है, इसको हटाने के लिए ही इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि मित्र के आने से जो राग की वृत्ति बन जाती है, शत्रु के आने से जो द्वेष की वृत्ति बनती है, ऐसे वृत्ति ये सब अवैध ही है, राग करना भी तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए इसका शमन का अभ्यास करो, शम। और योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते, योग के ऊपर जो आरूढ़ हो चुका है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो चुका है, जीवन मुक्तों के बारे में ऐसा आता है कि उनका जीवन कैसा होता है, आप लोग पुस्तक पढ़ते होंगे, कई जगह लिखा हुआ मिलता है जीवन मुक्त के बारे में। एक तो ये लक्षण दिया है, कुरंगाक्षी वृंदम तमनुसरति प्रेम तरलम वसत्तस्य क्षोणी पतिरपि धरित्री परिवृढ़ रिपु कारागारम कलयति परम केली कलया चिरम जीवन मुक्त सच भवति भक्त प्रतिजने। ये जीवन मुक्तों के बारे में बताया गया है, उनका जीवन कैसा है। आप लोग तो जीवन मुक्त नहीं हो ना अभी, हो यदि हो तो एक बात बताता हूं, आज से आप लोग मानना मना कर दोगे कि हम जीवन मुक्त नहीं है। बोले जीवन मुक्त के शरीर में कितनी मिठास हो जाती है कि चींटी भी उसको खाने के लिए आ जाती है। किसको? जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का शरीर मीठा होता है ऐसा बताया। कैसी मिठास है, जहां जाए उसके अंदर से एक ऐसा पराग निकलता है, जो भी उनको देखे चित्त में विक्षेप नहीं होता। विक्षिप्त व्यक्ति भी जीवन मुक्त को देखकर शांत हो जाता है। जैसे कितने भी काम वासना व्यक्ति को सताए, लेकिन अपनी जन्मदाता मां जब सामने आती है तो उसकी काम वासना प्रतिबद्ध हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन मुक्त जब सामने आ जाए, मन कितना भी अशांत हो उनके दर्शन करने से शांत हो जाता है, क्योंकि वो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए। और ऐसा जब भी किसी व्यक्ति को देख करके मन में आवे ना, वहां संदेह नहीं करना, समझ लेना कि ये तो जीवन मुक्त है। कुरंगाक्षी वृंदम तमनुसरति प्रेम तरलम, ऐसा उसमें से प्रेम रस टपकता है। जैसे कोई सुंदर व्यक्ति हो तो उसके पीछे लोग घूमते रहे देखने के लिए, ऐसे जीवन मुक्त को लोग चारों ओर से घेर के बैठे रहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना क्या होता है बैठने से, वो तो जिसको आनंद मिलता है वही जानता है। औपचारिकता करोगे, चलो सब बैठे हम भी बैठ लेते हैं, तब भी आप टाइम देखते रहो कब उठे कब जाए, क्योंकि आप औपचारिकता में बैठे हो। स्वाभाविक रूप से जो बैठना होता है उसका एक आनंद ही अलग है। कोई ऐसे महापुरुष थे, अब वो गांव में कहीं रहते होंगे, सब लोग कोई भी जाए उनके मुंह से वही दो तीन वाक्य निकलते थे। कोई आ गया बोले आओ, थोड़ी देर खड़ा रहा देखा बैठा नहीं तो बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठा रहे, देखा यहां कुछ बोल तो नहीं, वो मौन में रहते थे ज्यादा, क्या बोलेंगे। नृसिंहगिरी जी महाराज का नाम सुना होगा ना आप लोग, गुरु जी कैलाश में पढ़े थे नृसिंहगिरी जी महाराज। हाँ, तो जब वो मंडलेश्वर बने होंगे तो बनारस में है आज भी वो ध्रुवेश्वर मठ। बहुत पुरानी बात लोग बताते थे पुराने महात्मा, जब वो नए नए मंडलेश्वर बने, अब आश्रम चलाना जिम्मेवारी आ जाती है, आश्रम चलाने के लिए कुछ सुनाओ, कुछ कथा करो, कुछ लोग देंगे तभी तो चलेगा। अब वो एकदम अपने वृत्ति में स्थिति में रहने वाले कहां से सब प्रपंच झंझट करें। कोठारी आके बोले, महाराज कुछ सुनाया करी, जब लोग आते हैं ना थोड़ा कुछ सुनाया करी तभी चलेगा। महाराज ने कहा, लोग जो आते हैं ना सुनने नहीं आते, सुनाने आते हैं। तुमको विश्वास न हो तो आके देख लेना, वो हमको बोलने का मौका दे तब तो मैं बोलूं। वो स्वयं ही इतना दिमाग में भर के लाते हो, सब हमारे पास खाली करके जाते, तो करें क्या, ऐसा होता है कई बार। तो जीवन मुक्त के पास जब बैठते हैं तो हर आदमी के जो है ना अपने अपने वेदना रहती है। किसी को लगता है कि उनके दर्शन करने से शांति मिलती है, किसी को लगता है थोड़ी देर बैठ जाओ, किसी को लगता है कुछ बात कर लो, कुछ पूछ लूं। चाहे 10 बार पूछे हो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, मुस्कुरा के जवाब देंगे। हम लोगों का मुस्कुराना भी स्वार्थ में होता है या तो औपचारिकता में होता है, जीवन मुक्त की औपचारिकता भी नहीं, सहजता है। हम लोग थोड़ी क्या कर रहे, निभा लो बाद में देख लेंगे, जैसे गया बोले बड़ा सिर दर्द है, जब भी आता है दिमाग खाता है। जीवन मुक्त कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये सिर दर्द है क्या है, वो प्रारब्ध मान के चलते, प्रारब्ध में था आया चला गया। साक्षी भाव में रहने का अभ्यास तो यही तो है। अभी हम लोग साक्षी बनने की कोशिश करते हैं और बाद में पुनः असाक्षी हो जाते हैं। ये सब तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन होता यही है। हाँ हाँ तो करते हैं, बाद में बोले अरे वो ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। तो साक्षी भाव में रह करके सुने होते तो आप बाद में उसकी चर्चा करते क्या। बाद में यदि वह प्रसंग उठा रहे हैं तो इसका मतलब है हमने उसके सामने साक्षी भाव में रहने की कोशिश की और बाद में पुनः किस में आ गए, साक्षी भाव में आ गए, तो मामला तो गड़बड़ हो गया ना। कुरंगाक्षी वृंदम तमनुसरति प्रेम तरलम। ऐसे वो सहज अवस्था में रहते हैं कि उनके अंदर से रस टपकता है, वो कभी किसी की चर्चा करते नहीं। तो जो भी आ जाए बोले आओ, खड़े रहे तो बोले बैठ जाओ, और बहुत देर तक बैठे रहे, अब आदमी सोचे कुछ बोलते तो है नहीं, चलो अब जाते हैं, तो बोले अच्छा जा रहे हो। ये 3 वाक्य केवल बोलते थे, कोई भी आए आओ बैठो जा रहे हो। इतने होने पर भी भीड़ लगी रहती थी, कुछ नहीं बोलना, शांत रहना। आप किसी घर जाओ, कोई आपसे ऐसा न बोले तो कैसा लगेगा, जाते तो बात ही नहीं करते, और बाद में वो बात करे तो फिर दुख होगा। वो तो ऐसा है नहीं, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, कोई आए तो भी चुप रहना है, नहीं है कोई तो भी चुप रहना है, वहीं पर तो प्रेम होगा ना। फिर इतने भीड़ हो गया, इतने भीड़ हो जाए तो गांव में एक ऐसा उठपटांग आदमी था, उसने सोचा आखिर किस बात की भीड़ होती है, वो भी गया देखने के लिए। उसको तो देख रहा था क्या हो रहा है, तो देखा कोई आ रहे तो बोलते आओ, खड़ा है तो बोलते बैठ जाओ, जाने लगता है तो बोलते जा रहे हो। इतने सुनने के लिए जाते हो, कुछ है ही नहीं हुआ, आओ गुस्सा में आओ बैठो जा रहे हो, आओ बैठो जा रहे हो। उसके मन में इतनी वृत्ति चलने लगी, जप जैसे करने लगा, करते करते गया अपना काम सब किया, रात में सोया, सपने में भी बुदबुदा रहा है आओ बैठो जा रहे हो। उस दिन उसके घर में चोर आया, चोर आया तो देखा कुछ बोल रहा है, शायद जग रहा है क्या, आओ बैठो जा रहे बोलता है, करवट लिया, चोर दरवाजे के पास खड़ा था कि देख क्या बोलते, बोलते आओ। चोर को लगा ऐसा पहली बार कोई मिला अपने घर के अंदर बुला रहा है। चला गया अंदर, बोले बैठो। बैठ भी गया, बैठने के लिए तो थोड़े गया था वो, थोड़ी देर बैठा रहा। बोले लगता है ये सो रहा है। तब तो वो लोग चोरी करने में लग गए, समान समान बाधा जाने लगे। बोले जा रहे हो? चोर बेचारे समझे ऐसा आदमी इसके चोरी करना ठीक नहीं, इतने स्वागत से बुलाया बैठाया और जाते समय पूछ रहा है जा रहे हो। अब उसके जैसे चरण पकड़ा उसकी नींद खुल गई। बोले क्या हुआ? बोले हम लोग इतने जगह चोरी करने गए, न तो किसी ने स्वागत से बुलाया, न बैठाया, न जाते समय ऐसा स्वागत किया, आप धन्य हो। अब उसको याद आया है कि देखो कोई भी वाक्य जो है ना व्यर्थ नहीं जाता। इतने याद किया तो आज हमारे घर में चोरी होने का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवती तादृशी। जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है, याज्ञवल्क्य जी ने जो कहा है वहां पर एक बात ध्यान देने की चीज है। वहां अपने पत्नियों को बुला करके एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूं। लोग क्या समझते हैं घर छोड़ दो तो हो जाएगा। घर तो छोड़ दिया, घर का संस्कार तो लेके गए। यदि मन मुटाव करके भी जाओगे तो कहीं न कहीं मन में विक्षेप होगा। इसलिए कहा गया है यदि गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास लेने का मन में आ भी गया, पत्नी से बच्चों से सबको बता के सबकी सलाह लेके जाओगे तो फिर कोई विक्षेप नहीं होता है। उनको भी मालूम है कि बता के गए और हमको भी पता है कि हम उनको बोल के आए। और गुस्सा में यदि गए तो वो कदाचित शायद विक्षेप का कारण हो सकता है। इसलिए संन्यास शब्द का जो अर्थ है सम्यक, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, नितराम, निरंतर, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, निरंतर, असुक्षेपे, असुक्षेपे धातु से आस बनता है तो सम्यक नी आस संन्यास। तो आस का असुक्षेपे का अर्थ होगा जिसने नित्य निरंतर हमेशा के लिए भली प्रकार से आसक्ति का त्याग कर दिया, आसक्ति को फेंक दिया। उस आसक्ति में सब आ जाएगा। जहां गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान के साधनों का वर्णन है उसमें भी आता है असक्ति रणभिश्वंग पुत्रधार गृहादिशु। मिथ्या आत्मा से निवृत्त होने से पहले हमें गौण आत्माओं से निवृत्त होना पड़ेगा। गौण आत्माओं से छूटने के लिए पहले अपने तरफ ही जाते, अपने शरीर की तरफ ज्यादा आकर्षण होगा। नहीं तो क्या होता है कई बार घर परिवार में हम इतने मस्त हो जाते हैं, ना तो अपने खाने का ठिकाना रहता है, कई बार तो लोग दवाई भी नहीं ले पाते, भूल जाते, घर वाले आपको याद दिला के खिलाते हैं। तो ये अत्यधिक बहिर्मुखता परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदार के लिए करना, ये सब के सब गौण आत्मा में होने वाला अभिनिवेश है। जब व्यक्ति उस सब से छूटता है तो फिर अपने तक सीमित रहता है। अब आपको मोबाइल में रिमाइंडर में नहीं डालना पड़ेगा कि दवाई खाने के टाइम याद दिला देवे, आपको अपने पूरे टाइम टेबल का पता है। एक महात्मा जी से चले गए अब, तो उनकी बड़ी विचित्र आदत थी। हम लोग उनको मजाक में, उनका नाम ही था ऐसे, नाम तो था महेश्वरानंद, लेकिन हम लोग बोलते थे उनको नागा बाबा, नागा बाबा, नागा बाबा, बड़े प्रसिद्ध थे। और उनकी ऐसी आदत, कोई भी आप बात शुरू कर दो आपको नहीं बोलने देंगे, वो स्वयं अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देंगे। जैसा लगता था कि सारी बात की जानकारी इनको हो, और अपने कमरे के अंदर कुछ ढूंढना हो तो एक काम करने वाला लड़का था, उसका नाम था बालकिशन। ए बालकिशन, क्या हुआ स्वामी जी? अरे वो कैंची नहीं मिल रही कहां है। बोले सारी दुनिया की खबर रखते हो, अपने कमरे की कैंची का भी पता नहीं है आपको। बोले जवाब देता है, रेडियो खोल के समाचार सुनना शुरू करे, वो अपने बोलना शुरू कर देवे। तो एक दिन हम लोगों ने कहा आज अचानक जो है नागालैंड से समाचार प्रसारित हो रहा है, यही सुन लेते हैं। बोले अरे नागालैंड बोलते हो? हमने कहा 15 मिनट के लिए समाचार आ रहा है, आप तो बाद में भी बोल लोगे ना, या तो पहले बोलो या बाद में बोलो, समाचार के टाइम में मत बोलो बीच में। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, जो प्रसंग होगा वो नहीं सुनेंगे, अपनी बात शुरू कर देंगे। ये सब अत्यधिक बहिर्मुखता का लक्षण है। संसार की बातों में लग जाने से हमें अपना ख्याल नहीं होता, लेकिन जब सब कुछ छोड़ करके अपने शरीर में सीमित हो जाते हैं, पहले तो गौण आत्मा से हटने का अभ्यास करो ना। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, इस गृहस्थ आश्रम से मैं ऊपर उठना चाहता हूं। इसका मतलब है गृहस्थ आश्रम के जो जो कर्तव्य कर्म थे वो हम कर चुके, अब इससे ऊपर उठ करके हमें अपने लिए कल्याण करना है, आत्म कल्याण के लिए मैं जा रहा हूं। तब बोलती है उनकी पत्नी कि अनंत वित्तो ही भवान अंतवत दीयते कथम। आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो इससे कोई बड़ी चीज के लिए आप जा रहे? तो उन्होंने उसमें भी कोई चालाकी नहीं कि सुस्पष्ट बोला, हां बात तो सही है, मैं अब इन चीजों से ऊब चुका हूं, मुझे अब इससे ऊपर उठना है। तब वो बोलती है कि जो वित्त आप जिसके लिए जा रहे तदेव वसु दीयताम, वही वसु वही धन जिस धन के लिए आप जा रहे हो वही धन आप हमें भी प्रदान करें। तो न कर्मणा न प्रजया धरे न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। आप लोग जग रहे ना? हाँ बहुत बड़ी बात है, 7.5 से 8.5 ये बहुत बड़ा त्याग है, और जब आप यहां से उठते तो उससे ही बड़ा त्याग हो जाता है। त्यागात शांति अनंतरम। त्याग की बात बहुत होती है, बाहर से वस्तुओं का त्याग करना आसान है लेकिन अंदर से छोड़ना ये बहुत कठिन है। विवेक चूड़ामणि में इसलिए अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो कह करके बताया, आंतरिक त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहर के त्याग की अपेक्षा। बाहर से तो ऐसा दिखना चाहिए जैसे आप लोग कथा तो सुनते ही रहते हो, एक कोई महाराज ऐसे थे बड़े ज्ञान की स्थिति में रहते थे, किसी ने कहा अरे वो बड़े ज्ञानी उनको अपने दरबार में ले आओ, राजा ले आए, पहले तो आ नहीं रहते हो, जबरदस्ती लाया, नहीं महाराज आप हमारे यहां रहो हम सारी व्यवस्था करेंगे। अब वो जहां आए उनके वहां बड़े ठाट से रहने लगे, राजा से भी ज्यादा ठाट। अब नौकर सब परेशान, राजा को जाके शिकायत किया, बोले महाराज आप बोलते ज्ञानी है, कैसे ज्ञानी है, तो आपसे भी ज्यादा भोगी दिखते, पहले तो त्यागी थे और जब आप इनको यहां ले आए तब से हम लोगों को तंग कर रखे रखा है। राजा ने कहा ठीक है। बोले महाराज आपके से कुछ शिकायत आई है? बोले हाँ आई होगी शिकायत, फिर क्या करें? बोले चलो ऐसा करते यात्रा करते हैं कुछ। अब राजा को लेकर यात्रा करने निकले, थोड़े पहले टहलने गए, वॉकिंग करने जाते, वॉकिंग करते करते बोले बद्रीनाथ का रास्ता किधर है? बोले इधर ही चलते। राजा बोले आप तो इसे चल पड़े, हम लोग कुछ तैयारी करके आए नहीं। बोले यही तो बात है, तुमको तैयारी करने में टाइम लगता, हम बिना तैयारी के चलते, यही अंतर होता है दोनों में। हम लोग पूरे जीवन प्लान बनाते हैं, क्या प्लान बनाते हैं? अगले साल क्या करेंगे, उसके अगले साल क्या करेंगे, लेकिन 100 साल के बाद वाला प्लान है किसी के पास कि 100 साल के बाद क्या करेंगे, या कल प्राण छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा? इसकी तैयारी यहां पर होती है। कहां पर? प्रेमपुरी में। यहां पर सबकी तैयारी किसकी है? दुनिया का प्लान एक तरफ और ये है अंतिम वाला प्लान। तो इस प्लान के बोनस भरने के लिए आप लोग डेली आते हो, बहुत अच्छी बात है। कुरंगाक्षी वृंदम तमनुसरति प्रेम तरलम। जीवन मुक्त की बात चल रही थी, इसके अभी कथा रह गई है, ये भी सुनाएंगे बाद में। इतना तो मालूम पड़ गया कि जब वह सहज अवस्था में रहते हैं, बनावटी वाले के पास रहते हैं जब हम, तो हमारा स्वभाव भी बनावट वाला बन जाता है। दिन भर में आप चाहे चार बार कपड़े बदलो, यदि घर में आप अकेले हो, कोई देखने वाला न हो, तो उस कपड़े बदलने का कोई महत्व है? महत्व तो तब होता है कि कोई देखे और कहे, अरे वाह, सवेरे और पहना था, दोपहर में और, शाम को और। लेकिन आप अकेले ही हो, चाहे दिन भर में एक एक घंटे में बदलते रहो, उसका कोई महत्व नहीं है। ये जो बदलने वाली बात है, ये असहजा अवस्था और सहज अवस्था है। जैसे है, जहां है, वहीं से चल पड़ना। बसत्तस्यक्षोणी पतिरपि धरित्री परिविढ़। राजा लोग उनके आगे पीछे रहते, सेना लोग आगे पीछे रहते, और जो जीवन मुक्त से पंगा लेते हैं उसी को जेल में भी जाना पड़ता है। चिरम जीवन मुक्त सच भवती भक्त प्रतिजने, उनके लिए सब प्रिय और वह सबके लिए प्रिय। ये तभी होगा जिस दिन मौन हो जाओ, अपने मुंह से बोलना बंद कर दो कि मैं तुम्हें चाहता हूं और मैं तुम्हें नहीं चाहता हूं। और दुनिया चलती इसी में, चाहता हूं अथवा नहीं चाहता हूं, ये हम लोग दो बोलते रहते हैं। जब इससे ऊपर उठ गए, जिस स्थिति में जाने के लिए याज्ञवल्क तैयार हो चुके हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को राग और द्वेष से जब ऊपर उठेंगे, तब जाकर के फिर गौण आत्माओं में होने वाले आत्मत्व बुद्धि का जो अध्यास है, जो भ्रम है, ये छूटेगा। फिर मिथ्या आत्मा की तरफ आना है, फिर उसको भी छोड़ना है। वो सब कैसे करना है फिर देखेंगे कल। हरिओम।